İran Radio Podcast.
दोस्तों, जितना पुराना इतिहास इंसान का है, उतना ही पुराना युद्ध और शांति का भी है। जब से इंसान है, युद्ध और शांति भी तभी से है। दुनिया में अलग अलग वजहों से जंगें लड़ी जाती रही हैं। धर्म के नाम पर लड़ी जाने वाली जंगों का एक सिलसिला था, जिसे हम क्रूसेड्स के नाम से जानते हैं। क्रूसेड्स पॉडकास्ट का ये 5वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूँ सैयद मीसम अब्बास। अगर आप दूसरे दिलचस्प विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर विजिट कर सकते हैं। बैटल ऑफ हैटिन में क्रूसेडरों का सामना करने वाली सलाहुद्दीन की सेना क्रूसेडरों का सामना करने वाली अब तक की सबसे बड़ी मुस्लिम सेना थी। मोसुल से काहिरा तक मुसलमानों को एकजुट करके सलाहुद्दीन ने क्रूसेडर ठिकानों को नष्ट करने के लिए एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। हालांकि मुस्लिम सेना की रणनीति और हथियार वही थे जिसका उन्होंने 50 साल पहले पवित्र भूमि में क्रूसेडरों के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किया था। इस सेना और पिछली सेनाओं के बीच फर्क सिर्फ सलाहुद्दीन की कमान और सैनिकों की संख्या का था। 1187 ईस्वी में सलाहुद्दीन सेल्जों की बिखरे हुए सैनिकों को इकट्ठा करने और उन्हें अपनी सेना में शामिल करने में सक्षम रहे। क्रूसेडरों के उलट मुस्लिम सैनिकों की भर्ती और सेवा का समय निर्धारित नहीं था। ये अभियानों और लड़ाइयों की संख्या तक ही सीमित रहता था। इसी तरह अमीरों के पास शासन करने की अधिक शक्ति होती थी। उदाहरण के लिए अलेप्पो के अमीर का शहर पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण था और उसे केवल जरूरत पड़ने पर सुल्तान की सेना के लिए नफरी भेजनी पड़ती थी। हालांकि ये भी सुल्तान की शक्ति पर निर्भर करता था। अगर सुल्तान कमजोर होता था तो अमीर सैनिक प्रदान करने से इनकार कर देता था। यह सिलसिला 1092 तक सेल्जोक मलिक शाह की मौत से लेकर सलाहुद्दीन के उदय तक जारी रहा और इस दौरान कई अमीरों ने स्वतंत्रता की घोषणा की। मुस्लिम सेना और विशेष रूप से अय्यूबियों की सेना का एक बड़ा हिस्सा घुड़सवार सैनिकों का होता था। मुस्लिम घुड़सवार सेना के चार स्रोत थे, ममलूक, अरब, बेडोइन और तुर्कमन। ममलूक वो तुर्क गुलाम थे जिन्हें पहले राजकुमारों या महल के रक्षकों के लिए विशेष गार्ड के रूप में सैन्य इकाइयों में नियुक्त किया जाता था। मुस्लिम घुड़सवार सेना का आधा हिस्सा इस समूह पर आधारित था जो हथियारों और युद्ध क्षमता के मामले में क्रूसेडर नाइट्स का सामना करने में सक्षम था। बैटल ऑफ हैटिन में ममलूक इस्लामी जगत की सबसे बड़ी और सबसे विशिष्ट घुड़सवार सेना थी। दूसरा स्रोत शहरी अरब थे जिन्हें उनकी वफादारी के कारण सेना में भर्ती किया गया था। भारी हथियारों से लैस इस समूह में ज्यादातर भालाधारी और तलवारबाज थे। कुछ तीरंदाज भी इस समूह का हिस्सा थे, हालांकि उनकी तुर्क तीरंदाजों से तुलना नहीं की जा सकती थी। मुस्लिम घुड़सवार सेना का तीसरा हिस्सा बेडोइन थे जिनके पास भारी उपकरण और हथियार नहीं थे। इस समूह का इस्तेमाल ज्यादातर टोही और तेज छोटे हमलों के लिए किया जाता था। हालांकि ये समूह हैटिन के युद्ध में दोनों सेनाओं में मौजूद था, लेकिन सलाहुद्दीन की सेना में उनकी संख्या बहुत कम थी। अंतिम स्रोत और मुस्लिम सेना की सबसे महत्वपूर्ण सेना का हिस्सा वो तुर्कमन थे जो हल्के हथियारों से लैस घुड़सवार थे और सवारी के वक्त भी तीर चलाने में कुशल थे। इस समूह को मुस्लिम सेना की महत्वपूर्ण शक्ति माना जाता था। क्रूसेडरों की उनसे निपटने में सफलता का दारोमदार उन्हें कठिन परिस्थितियों में फंसाने पर होता था। घुड़सवार सेना के विपरीत जिसका इस्तेमाल हमलों में किया जाता था, पैदल सेना का इस्तेमाल रक्षा और घेराबंदी के लिए ज्यादा किया जाता था। ये समूह भालों, तीरों और कुछ हद तक हल्के कवच से लैस होता था, लेकिन क्रूसेडर पैदल सेना के बराबर नहीं था। मुसलमानों की युद्ध संरचना के संबंध में जैसा कि हम कह चुके हैं, घुड़सवार सेना का अधिक उपयोग किया जाता था, इसलिए बैजोइनों को टोही और हल्के हमलों की जिम्मेदारी दी जाती थी। तुर्कमान सैनिकों की जिम्मेदारी दुश्मन की पैदल सेना संरचना पर प्रहार करने और दुश्मन सेनाओं को एक दूसरे से अलग करने की होती थी। आखिरकार ममलूक और अरब घुड़सवार दुश्मन सेनाओं पर निर्णायक वार करते थे। हालांकि मुस्लिम सेना की एक बड़ी कमजोरियों में से एक ये घुड़सवार सेना थी, क्योंकि अमीर अपनी घुड़सवार सेनाओं के साथ मिस्र और मेसोपोटामिया से पवित्र भूमि पर पहुंचते थे और उन्हें अपनी सेनाओं के लिए बड़ी मात्रा में भोजन, चारा और पानी की जरूरत होती थी। क्रूसेडरों की एक रणनीति ये थी कि युद्ध को ऐसे स्थानों तक ले जाया जाए जहां मुसलमानों के लिए पानी और चारा उपलब्ध कराना कठिन हो जाए, और अगर क्रूसेडर ऐसा करने में सफल हो जाते तो मुस्लिम सेनाओं के पास पीछे हटने और संघर्ष छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। मुस्लिम सेना की एक और कमजोरी वक्त के हिसाब से लड़ाई में भाग लेना था, क्योंकि वो वर्ष के कुछ हिस्सों में नहीं लड़ते थे, जिससे क्रूसेडरों से निपटने में मुसलमानों की सैन्य शक्ति कम हो जाती थी। क्रूसेडरों के साथ जंग में अय्यूबियान और सलाहुद्दीन की रणनीति ये थी। सबसे पहले उन्होंने युद्ध क्षेत्र पर नियंत्रण किया, फिर क्रूसेडरों को दो तरीकों से हराया। प्रत्यक्ष आक्रमण, इसके लिए उन्होंने पहले कमजोर टुकड़ियों पर हमला किया और विरोधी ताकतों के बीच दूरी बनाकर उन्हें नष्ट कर दिया। घेराबंदी की रणनीति के तहत मुसलमानों ने क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया और अपनी सेनाओं को चारों ओर फैला दिया। धीरे धीरे क्रूसेडर सेनाओं का घेरा तंग किया और आपूर्ति और जलमार्ग काट दिए। इसके अलावा क्रूसेडर सेना के चारों ओर पेड़ों या झाड़ियों को जलाकर कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी। हैजिन क्षेत्र में सलाहुद्दीन का सामना करने वाली क्रूसेडर सेना की संरचना पश्चिमी यूरोप की उस समय की सामंती सेनाओं के समान थी, क्योंकि अधिकांश क्रूसेडर नेता और सेनाएं इन क्षेत्रों को छोड़कर पूर्व की ओर बढ़ चुके थे। यरूशलम साम्राज्य की स्थापना से लेकर हैटिन के युद्ध तक लगभग एक शताब्दी तक क्रूसेडरों ने इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कोई बड़ा हमला नहीं किया। इसके अलावा प्रथम धर्मयुद्ध की समाप्ति और क्रूसेडरों की विजय के बाद नव स्थापित यरूशलम साम्राज्य और उसके आश्रित प्रदेशों ने अपनी सैन्य संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया, जो सामंती यूरोप का एक अनुकूल था। और यूरोपीय सेना की संरचना से एकमात्र अंतर सैन्य आपूर्ति के स्रोत और एक अधिक शक्तिशाली सामंती संरचना थी। इसके अलावा यूरोप की सामंती सेना की तुलना में क्रूसेडर सेना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता शौर्य पर आधारित सैन्य धार्मिक शक्तियां थीं, जो शुरू में गैर युद्धक उद्देश्यों के लिए स्थापित की गई थीं, लेकिन धीरे धीरे सैन्य बल बन गईं ताकि वो राज्य को मुस्लिम हमलों से बचा सकें और ईसाई तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 1187 ईस्वी तक इन शक्तियों ने आधिकारिक तौर पर राज्य और अन्य क्रूसेडर राज्यों की महत्वपूर्ण सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली। प्रथम धर्मयुद्ध में जीत हासिल करने, यरूशलम पर विजय प्राप्त करने के बाद इस नव स्थापित साम्राज्य को ये एहसास हुआ कि उसकी सैन्य शक्तियाँ मुस्लिम सेनाओं का सामना करने में सक्षम नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए यरूशलम साम्राज्य ने पश्चिमी यूरोपीय सामंती व्यवस्था के एक संशोधित मॉडल को अपनाने का निर्णय लिया। इस नए मॉडल के अनुसार यरूशलम साम्राज्य की सेनाओं की आपूर्ति का स्रोत पश्चिमी यूरोपीय संरचना से अलग हो गया। आपूर्ति के स्रोतों के बाद अन्य स्रोत भी थे जो धर्म योद्धाओं के लिए विशिष्ट थे। पहला स्रोत तुर्कोपोल था, जिन्हें अक्सर सामंती राज्यों द्वारा भाड़े के सैनिकों के रूप में नियुक्त किया जाता था। ये सैनिक सीरिया और आर्मेनियाई साम्राज्य की सेनाओं से भर्ती किए जाते थे, जिनमें हल्के घुड़सवार या तीरंदाज शामिल थे। अपनी गति के साथ ये सेनाएं मुस्लिम घुड़सवार तीरंदाजों से निपटने में धर्म योद्धाओं की मदद कर सकती थी। क्रूसेडर सेनाओं का गठन एक अन्य स्रोत तीर्थयात्री और नाविक थे, जो समुद्र या भूमि पार करके पवित्र भूमि पहुंचते थे। इन सेनाओं का उपयोग शाही सेना द्वारा आपातकाल और संकट के समय में किया जाता था, जैसे कि हैचिन के युद्ध और यरूशलम की घेराबंदी के बाद हुआ था। क्रूसेडर सेनाओं का अंतिम और मुख्य स्रोत यरूशलम की विजय के बाद गठित धार्मिक सैन्य आदेश थे। सबसे महत्वपूर्ण सैन्य समूह यरूशलम या नाइट्स टेम्पलर और नाइट्स हॉस्पिटलर थे। नाइट्स हॉस्पिटलर, जो ईसाई तीर्थ यात्रियों की देखभाल और उपचार के लिए जिम्मेदार थे, पहले यरूशलम और फिर क्रूसेडर राज्यों के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों तक फैले और यहाँ तक कि उन्होंने यूरोप में भी प्रवेश किया। इस समूह ने धीरे धीरे अपने सैन्य पहलू को बढ़ाया और पूर्व में धर्मयुद्धों के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य बलों में से एक बन गया। एक अन्य समूह नाइट्स टेम्पलर था, जिसने यरूशलम की ओर बढ़ रहे ईसाई तीर्थयात्रियों की रक्षा के लिए शुरू से ही एक सैन्य संगठन बनाया था। क्रूसेडर सेनाओं के संगठन में एक विशेष सैन्य बल भी था। उन्हें पहले कई समूह और टुकड़ियों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक में पैदल सेना और घुड़सवार सेना शामिल थी, और प्रत्येक टुकड़ी की संख्या क्रूसेडर सेना में लोगों की संख्या और दुश्मन के लोगों की संख्या पर निर्भर करती थी। इस प्रकार क्रूसेडर अपनी सेनाओं को कभी एक स्थान पर केंद्रित नहीं करते थे, ताकि अचानक हमले की स्थिति में उन्हें कम नुकसान झेलना पड़े। सेना का विभाजन भी इस प्रकार था। सबसे पहले सेना का अग्रभाग या हरावल दस्ता, फिर सेना का हृदय जिसका नेतृत्व स्वयं राजा करता था, और अंत में सेना का पिछला भाग। सेना का हृदय, जो मुख्यतः पैदल सेना से बना था, अन्य दो भागों का नेतृत्व और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिम्मेदार था, और पिछला भाग मुसलमानों द्वारा किए जाने वाले अचानक हमलों से सेना के मध्य भाग की रक्षा के लिए जिम्मेदार था। प्रत्येक टुकड़ी के बीच की दूरी भी क्षेत्र और दुश्मन के खतरे पर निर्भर करती थी। हालांकि केंद्र से आगे और पीछे के हिस्सों के बीच की दूरी ऐसी थी कि सेना का हृदय आवश्यकता पड़ने पर अपनी सैन्य संरचना बना सकता था। हालांकि जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, युद्ध में दोनों पक्षों की इन रणनीतियों का परिणाम अंततः मुसलमानों के पक्ष में रहा, और 88 वर्षों के बाद पवित्र भूमि मुसलमानों को वापस मिल गई।